मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे दल बदल की राजनीति, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन पहले कुछ एक दो सूचनाएं हैं और फिर कुछ खबरें, और इसके बाद हम लोग मुख्य विषय पर आएंगे। पहली बात तो ये कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो इंटरव्यू जो बाकी थे, पिछले साल प्री एग्ज़ाम हुआ था, फिर इसी साल मेंस हुआ, इंटरव्यू अभी होने बाकी थे, कोरोना की वजह से उसे टाल दिया गया था। तो ये इंटरव्यू अब 2 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 2 अगस्त से लेकर के सितंबर के थर्ड वीक की शुरुआत तक चलेंगे। इसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो स्वाभाविक है कि जब आप प्री एग्ज़ाम दे रहे होंगे उससे पहले पहले फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा। 2 अगस्त से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। बीच बीच में मैं इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित बातें भी किया करूंगा, तो आप सबकी जानकारी के लिए है। एक बात मैं स्पेशली अपने प्रिय श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, उसके आसपास नहीं रह रहे हैं, और दिल्ली जाने की योजना हो और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से प्लान कीजिए कि जब इंटरव्यू हो रहे हों उस समय आप दिल्ली में हों और कुछ घंटों के लिए आप यूपीएससी का जो ऑफिस है धौलपुर हाउस शाहजहां रोड पर, वहां जा सके। तो इस तरह से आप अपना प्लान बना सकते हैं, वहां जाकर के क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर हम लोग आगे चल करके कभी बात करेंगे। दूसरी सूचना ये है फ्रेंड्स कि मैंने आप सबसे कहा था कि प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कैसे हम सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें, उस पर काफ़ी लंबी हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। अब आगे क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में आप लोगों ने बताएं। मुझे खुशी है कि बहुत से आप में से लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। अभी आप सबके जो विचार मेरे पास आए हैं मैं उनका खुलासा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अभी 3 दिन का वक्त और देता हूं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार तो डेली ऑडियो लेक्चर आता नहीं है। आप सब अपनी अपनी राय मुझे बताएं और इसके बाद सोमवार को फिर हम लोग फाइनल करेंगे कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों आइए अब कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की तरफ जो अखबार आते हैं उनमें बिरसा मुंडा के बारे में अभी जो एक खबर छपी थी, बिरसा मुंडा से संबंधित कहना चाहिए, वो आप लोगों ने देखा या नहीं। एक खबर ये थी कि बिरसा मुंडा की जो पड़पोती हैं वो बाजार में सब्जी बेचते हुए मिली, और खासकर वह जो दिन था वो बिरसा मुंडा की 121वें शहादत दिवस का दिन था, वो सब्जियां बेच रही थी। ये खबर छपी और काफ़ी प्रोमिनेंटली इधर के अखबारों में काफ़ी विस्तार के साथ और लगभग सभी अखबारों ने इसे छापा। ठीक है, चलिए अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहली बात कि आपको बिरसा मुंडा के बारे में तुरंत कुछ न कुछ जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि बिरसा मुंडा कौन है। रांची के रहने वाले थे जो अभी झारखंड की राजधानी है। 1875 में इनका जन्म हुआ था और लेकिन 24-25 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। जेल में कहा जाता है कि यातना देकर, पॉइजन देकर के इन्हें मारा गया, केवल 24-25 साल की उम्र। बेसिकली ये रिलीजियस लीडर थे और हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे। ट्राइब्स जो मुंडा, इनका जो सरनेम है मुंडा, जो जनजाति है उसमें ये हुए थे, उनकी कम्युनिटी थी। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था और अपने लोगों से कहा था कि टैक्स मत दो। नारा देते थे कि महारानी के राज को खत्म करो, हम अपना राज स्थापित करेंगे। और खासकर उस समय जो ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा था, धर्म परिवर्तन, उसके विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन चलाया था। जो जनजाति की अपने जो धर्म और संस्कृति है उसकी रक्षा की उन्होंने बात कही थी। अपने लोगों के लिए उन्होंने घोषित किया था कि मैं गॉड हूँ, आई एम ए गॉड। अपने आप को आप यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से भगवान घोषित किया था, और लोग इस रूप में उन्हें मानने भी लगे थे। और कल्पना करके देखिए कि उनकी उम्र कितनी थी, 25 साल, और हमारे संसद के संग्रहालय में इनकी आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, और एकमात्र ये ट्राइब लीडर हैं जिनकी प्रतिमा हमारे संसद के म्यूजियम में लगी हुई है। तो खबर जैसे कि आई कि उनकी जो पड़पोती हैं वो सब्जियां बेच रही हैं। इसके बाद और आगे खबरें आई, इंटरव्यू लिया गया, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो सब्जी बेचने वाली उनकी पड़पोती है जिनका नाम जॉनी कुमारी मुंडा है, अभी बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और वहाँ की सरकार को उन्होंने 3 बार एप्लीकेशन दिया है स्कॉलरशिप के लिए, जबकि वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थे। स्कॉलरशिप नियम के तहत, कानून के तहत उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, राइट। और मजेदार बात है कि उस जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं, उस कॉलेज का नाम है बिरसा कॉलेज, बिरसा कॉलेज, मतलब उनके जो पड़दादा होंगे वो बिरसा जी, उनके नाम से वो कॉलेज बना है, लेकिन सरकार में ये सुनवाई नहीं हो रही है। इस समाचार का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? देखिए, कई तरह के सवाल यहाँ खड़े होते हैं। 121 साल हो गए हैं आज़ादी के, हमारे 75 साल होने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से हमने इसके बाद अपने लीडर्स, जो इतने बड़े लीडर्स रहे हैं, जो जनजाति समुदाय से हैं, उनके विकास की तरफ कितना ध्यान दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो स्कूल इनके विकास, चाहे वो जनजाति समुदाय के हों या शेड्यूल कास्ट के हों, उनके बारे में जो स्कीम बनाती है, योजनाएं लागू की जाती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो आरक्षण दिए जाते हैं, उनका लाभ फिर किनको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये इसका परिवार, बिरसा मुंडा का परिवार, जब इतने बड़े लीडर का परिवार इन सबसे वंचित हो सकता है, तो पहला सवाल। दूसरा सवाल प्रशासन को लेकर के है। क्या सच में प्रशासन इतना असंवेदनशील हो सकता है कि इतने बड़े लीडर की पड़पोती एप्लीकेशन दे रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो सामान्य व्यक्ति की क्या सुनवाई हो रही होगी? तो इस तरीके से 2-3 सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं इस घटना को लेकर के। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आप इस तरीके से इस उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि बिरसा मुंडा के बारे में आप थोड़ा सा, एक छोटा सा नोट बना लें या पॉइंट्स नोट कर लें। हो सकता है कि मेंस में फर्स्ट पेपर जो आपका हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री भी उसमें होती है, उसमें हिस्ट्री पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में पूछ लिया जाए, या स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे जनजातीय लीडर रहे हैं उनकी क्या भूमिका रही है, या जनजातीय आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों, अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। दैनिक भास्कर में शशि थरूर जी का एक आर्टिकल छपा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और दैनिक भास्कर में ही एडिटोरियल कमेंट है, वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उनको पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने दिमाग में जो हमारी राजनीति की स्थिति है उसके बारे में एक धारणा बनाएं, आपके पास अपनी धारणा होनी चाहिए। कुछ साल पहले, मेरे सबसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 2-3 साल पहले मुख्य परीक्षा में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, और उसमें कुछ इस तरह का था कि हमारी जो राजनीतिक दलें हैं उनके अंदर या उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, और वो सामंतवादी विचारों से प्रभावित हैं, कुछ इस तरह का था। अभी खासकर जो दल बदल की स्थितियाँ आपको देखने को मिली, आप देखिए कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल कर लिया गया, चुनाव हो गए, तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे अब वो तृणमूल कांग्रेस में जाने के लिए छटपटा रहे हैं। जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के बहुत सम्मानित लीडर थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी आप कुछ खबरें बड़े आराम से पढ़ चुके हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में ही जो पिछले साल कोरोना के शुरुआत में ही जब सरकार बदली हुई थी तो उसमें भी यही था कि जो कांग्रेस के कुछ एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। तो इस तरह की घटनाएं लगातार चलती रहती हैं। खासकर जो शशि थरूर का जो आर्टिकल है वो इसके बारे में हमें बहुत अच्छा सैद्धांतिक आधार उपलब्ध करा रहा है, उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और अपने लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, होता यह है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम उसे केवल नैतिकता के आधार पर ले लेते हैं कि नहीं, नहीं होना चाहिए। सवाल है कि क्यों नहीं होना चाहिए? भाई, आप किसी पार्टी में हैं और वो पार्टी अब आपकी विचारधारा के अनुकूल नहीं रह गई तो दल बदल भी देना चाहिए। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी मेरे विचारों के अनुकूल नहीं है, तो क्या ये सच्चाई है? और फिर आप जिसमें जा रहे हैं तो क्या वो आपके विचारों के अनुकूल है? इससे पहले जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं अपनी पार्टी को लेकर के, या जिसमें आप गए हैं उस पार्टी को लेकर के, क्या उनमें कोई कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है? तो ये एक बहुत ही विचार करने वाला मुद्दा है। और याद रखिए कि यहाँ मैं जो दल बदल की बात कर रहा हूँ, दल बदल 2 तरह के हैं। एक तो ये है कि आप निर्वाचित हो गए हैं, इसके बाद दल को बदल रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि कांग्रेस के जो एमएलए थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो ये दल बदल का एक रूप हुआ, यानी कि निर्वाचन के बाद आप गए। जो दूसरा दल बदल है वो आप चुने नहीं गए हैं, ना तो आप एमएलए हैं और ना आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन आपने पार्टी बदल ली है। तो अगर आप इन दोनों को दोनों की आपस में तुलना करें, तो जब आप एमएलए या एमपी नहीं हैं और फिर आप दल बदल लेते हैं, तो ये दल बदल थोड़ा सा नैतिक दृष्टि से सही मालूम पड़ता है, क्योंकि इसमें कम से कम जनता ने आपको निर्वाचित नहीं किया है, तो जनता के साथ तो कम से कम छल कपट नहीं हो रहा है या धोखा नहीं हो रहा है या जो भी आप इसे एक नाम देना चाहें। लेकिन निर्वाचन के बाद यदि आप दल बदलते हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिन्होंने आपको निर्वाचित करके भेजा है उनके साथ एक धोखा जैसी स्थिति भी मालूम पड़ती है। तो दल बदल को आपको इन दो रूपों में बांट करके देखना होगा और अपने दिमाग में चीज़ें बहुत स्पष्ट रखनी होंगी कि आपको कौन सी लाइन लेकर के चलनी है। तो ये जो दोनों दैनिक भास्कर के आज आपको मैं जो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि आपको दृष्टि देने का बहुत अच्छा काम करेंगे और आपको चाहिए कि आप उसमें से कुछ बहुत अच्छी जो पंक्तियां आपको लगें, वैचारिक पंक्तियां, आप उन्हें नोट कर लें, बकायदे नोट कर लें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: विशाल गोसवाल, बिन्नी कुमारी सारण बिहार से, मोहम्मद तैयब, भास्कर शर्मा, प्रणव राज, सागर साव झारखंड से और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं समाप्त करना चाहूँगा। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। आप सब अपना ध्यान रखें, कुशल से रहें। नमस्कार।